તારીખ 19/9/1991 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 449 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 530
વિદ્યમાનતા મેં ભી ઉદયવશ કભી સમાગમ રહેતા હૈ કભી ઉદયવશ સમાગમ નહીં રહેતા या तो दूसरे गांव रहना पड़ता है या जाना पड़ता है या तो एक ही गांव में हुए तो भी स्वास्थ्य अनुकूल नहीं हो बिस्तर पर लेटे रहना पड़ता है। तो उदयवश अंतराय होता है। ज्ञानी पुरुष तो विद्यमान हो सकता है लेकिन उदय के कारण अंतराय भी हो सकता है। ऐसे प्रसंग में क्या करना, इसका मतलब ये तो अवश्य होता है कि ज्ञानी होवे तो इसका सत्संग में ही रहना चाहिए मुमुक्षु को। अपने कारण से तो समागम को छोड़ना नहीं चाहिए या उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई अंतराय होता है कुदरत के कारण से और समागम चाहते हुए भी नहीं होता है। समागम तो चाहते हैं लेकिन चाहते हुए भी नहीं होता है तो क्या करना चाहिए मुमुक्षुओं को? कि फिर मुमुक्षुओं को ज्ञानी पुरुष की दशा को, दशा का अवलोकन करना, निरखना मैंने अवलोकन करना, परोक्ष है, प्रत्यक्ष में तो देखें लेकिन परोक्ष होवे तो भी देखें, निरखे मैंने देखे। हिंदी में निरखना शब्द है क्या? हाँ, निरखना, देखना। उसकी दशा को निरखना या स्मरण में लेना, ये स्मृति का विषय हुआ। और इसकी विचारणा करना, इसके भिन्न भिन्न पहलू के विचारणा करना, दोनों बात ज्ञानी पुरुष की को भाव में लेने का है। निरखने से, स्मरण करने से और इनकी दशा और चेष्टा का विचार करने से ज्ञानी के प्रति जो बहुमान है वो वृत्तिगत होता है। पुनः वह समागम के अंतराय में प्रवृत्ति के प्रसंगों में अत्यंत सावधानपना राखना चाहिए। गुजराती में घटे छे आवे छे, इसका हिंदी क्या होता है? ऐसा होना चाहिए है, वो भी ठीक है पर वो एग्जैक्टली संतोष नहीं होता है। ઘટે છે એટલે આપણે શું કહીએ છીએ કે અહીંયા એ વસ્તુની ખામી દેખાય છે, આમ કરવું ઘટે છે, આમ કરવું ઘટે છે, આવશ્યક છે આવશ્યકતા, આવશ્યકતા કા ભાવ ઠીક બેઠતા હૈ। इस समागम के अंतराय में और प्रवृत्ति के प्रसंग में, जैसे हमको कोई हमारी व्यवसायिक प्रवृत्ति होती है तो समागम नहीं कर पाते, तो अंतराय समागम में तो अंतराय हो गया और व्यवसाय आदि की जो प्रवृत्ति है इसमें हम व्यस्त हो गए। उस काल में, उसी समय में अत्यंत सावधानपना मैंने जागृति अत्यंत जागृति रखने आवश्यक है। दूसरी व्यावसायिक आदि औदयिक कोई भी प्रवृत्ति हो उसमें जागृति रहनी वो आवश्यक है। जागृति रहने मैंने क्या कि मैं तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, प्रसंग वसात मुझे उसमें प्रसंगोचित अपनी मर्यादा में रहकर प्रवृत्ति करनी पड़ती है, लेकिन मेरी रुचि इसमें नहीं, रुचि उत्पन्न नहीं हो जावे या उत्पन्न हो तो बढ़ नहीं जावे, इस प्रकार की जागृति रहनी आवश्यक है। क्योंकि एक तो समागम का बल वहां नहीं है, जहां समागम छूट गया तो समागम से जो बल मिलता है वो बल तो वहां नहीं है, उदय भाव का जोर है वहां। एक तो समागम का बल वहां नहीं और दूसरा अनादि का अभ्यास है, जो व्यवसाय आदि प्रवृत्ति है उदय भाव की प्रवृत्ति है उसमें उस प्रकार का तो रागादि करने का हमारा अनादि का अभ्यास है। मैंने उल्टी प्रैक्टिस तो अनादि की अभ्यास रूप है, दूसरा अनादि का अभ्यास है जिसका ऐसी सहजाकार प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति में सहजता आ जाती है, सहज प्रवृत्ति हो जाती है, उदय के साथ सहज उतना तन्मय भाव से प्रवृत्ति रह जाती है, ऐसी आदत बन गई है। इसलिए जिससे जीव आवरण को प्राप्त होता है, इस कारण से जीव को आवरण होता है, और मुख्यतया जो आवरण होता है वो स्वानुभूति आवरण है। स्वानुभूति से हम दूर चले जाते हैं। ये शब्द का प्रयोग पंचाध्यायी सिवा और ग्रंथों में नहीं मिलता, स्वानुभूति आवरण। आठ कर्म में कोई ऐसी प्रकृति नहीं है, लेकिन ये दर्शन मोके का दूसरा नाम है स्वानुभूति आवरण। ये ज्ञान प्रधान और वेदन प्रधान आवरण है और उसमें दर्शन मोह की प्रधानता है, दर्शन मोह में श्रद्धान की प्रधानता है, विपरीत श्रद्धान की प्रधानता है। तो जो उदय भाव में रस आता है और उदय भाव में एकमेक तन्मय होकर के सहजाक सहज रूप से उदय को जीव कर्तृत्व बुद्धि से कर्ता भाव से परिणमता है या भोक्ता भाव से परिणमता है या अपनत्व करके परिणमता है या आधार बुद्धि से परिणमता है, ये सब मिथ्यात्व के आवरण के कारण है, दर्शनों की प्रधानता वाला परिणाम है। उसमें आवरण प्राप्त होता है जीव, यानी स्वयं का अनुभव नहीं हो सके, ऐसी एक भावात्मक दूरी हो जाती है, उसी को आवरण कहते हैं। क्या भाव में दूरवर्तीपणा, जो वो भावात्मक दूरी को यहां जीव को आवरण की प्राप्ति हुई ऐसा कहते हैं। जिससे जीव को आवरण प्राप्त होता है, और किस किस प्रकार का वो काम होते हैं? या तो अपने कुटुंब का, घर का काम होता है, पारिवारिक काम होता है, दूसरा ज्ञाति संबंधी भी होता है कि हमारी ज्ञाति में, जाति में आप बड़े घराने के हैं, आपको ये स्थान दिया जाता है कि प्रमुख बनाते हैं, कोई कैसे बनाते हैं, कोई कैसे बनाते हैं, हमेशा तो घर का काम, ज्ञाति का काम, और दूसरा ऐसे ही प्रकार के व्यवसाय का काम, धंधा रोजगार का काम होता है। उस काम, उस कार्यों का कारण प्राप्त, कारण पड़े, मैंने क्राप, कारण आ पड़ने से, कारण आ जाने से घर का भी कोई काम आ जावे, ज्ञाति का कोई काम आ जावे, कोई व्यवसाय का काम आ जावे, किसी भी प्रकार का कोई प्रसंग आ पड़ने से मुमुक्षु को कैसे परिणमन होना चाहिए कि उस काल में कारण आ पड़ने से उदासीन भाव से प्रतिबंध रूप जानकर प्रवृत्ति कर, प्रवर्तना आवश्यक है, प्रवर्तन करना आवश्यक है। क्या? उदासीन भाव से, मैंने अपेक्षित भाव से नहीं, क्या उस कार्य की, उस कारण की, उस प्रवृत्ति की हमें अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई पूर्व कर्म का उद्देश्य ये प्रसंग आपड़ा है और निभाना जरूरी है, ऐसा लगता है कि नहीं निभाने से और भी कोई खराबी और ज़्यादा हो सकती है, तो निभा लेना चाहिए, लेकिन उदासीन भाव से, उपेक्षित भाव से। और क्यों उदासीन भाव आवे, क्यों आए, ऐसा उदासीन भाव आएगा क्यों? कि ये हमको बंधन का कारण है, नुकसान का कारण है, प्रतिबंध का कारण है, हमारे आत्मा को ये आवरण का कारण है, आवरण का निमित्त है, ऐसा जान करके हमें उसमें अपेक्षा नहीं रह करके उपेक्षा रहनी, यही आवश्यक है। परंतु इस कारणों को मुख्य करके कोई प्रवर्तन नहीं करना चाहिए, इसी को मुख्यता नहीं देनी चाहिए। जो भी प्रसंग उत्पन्न हुआ है उसको मुख्यता नहीं देनी चाहिए, उसमें मुख्यपणे, मुख्य रूप से प्रवृत्ति अपनी नहीं होनी चाहिए, उसको गौण कर देना चाहिए, अपने परिणाम में उसको गौण कर देना चाहिए। और ऐसे हुए बिना प्रवृत्ति का अवकाश प्राप्त नहीं, प्रवृत्ति का अवकाश प्राप्त नहीं होता। अगर ऐसा नहीं करेंगे, मुमुक्षु इस प्रकार से प्रवृत्ति नहीं करे जैसा कहा वैसा, तो उनकी प्रवृत्ति इतनी एक पीछे उदय की लाइन लगी रहेगी को प्रवृत्ति में से निकल ही नहीं पाएगा, छूट ही नहीं पाएगा, ये बात हो जाएगी। कई लोग ऐसे कहते हैं हमारे यहाँ भी कि क्या करें, हमको इतना काम रहता है, इतना बड़ा कारोबार है, उतना काम रहता है, उतना काम रहता है कि ऐसी तत्वज्ञान की बातों में, गहराई में जाने का संभव ही नहीं हमारे लिए, क्योंकि सारे दिन हमारे परिणाम और माथा इतना वहाँ लगाना पड़ता है कि इन बातों में कोई हमारा काम नहीं दिखता, अवकाश ही नहीं है, हमें ऐसा कहते हैं। तो सही बात है, अवकाश क्यों रहेगा, क्योंकि खुद को अपेक्षा वृत्ति बहुत है, जो भी उदय आ जाता है उसमें अपेक्षा वृत्ति तीव्र रूप से काम करती है, इसलिए फिर प्रवृत्ति में से अवकाश प्राप्त होना संभव नहीं है। ये तीसरे पत्र में ज्ञानी पुरुष का समागम चाहते हुए भी अंतराय उत्पन्न होता है तो किस प्रकार से मुमुक्षु को परिणमन होना चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए, इसका मार्गदर्शन दिया है। बहुत अच्छा मार्गदर्शन है ये। बात चलती है ना कि क्या करें, व्यवसाय करना पड़ता है, कई प्रकार के पारिवारिक काम भी आ पड़ते हैं, कई प्रकार के समाज के भी काम आ पड़ते हैं, तो इसके लिए बहुत सुंदर मार्गदर्शन है ये कि मूल में ऐसे उदयिक कार्यों में अपनी तो अपेक्षा वृत्ति नहीं रखनी है, लेकिन हमने पूर्व में जो भूल करी है उस भूल के कारण ये प्रसंग तो छोड़ नहीं सकते, प्रसंग को निभाना पड़ेगा ऐसा जब लगता है तो उपेक्षित वृत्ति से निभाना, और ज्ञानी का समागम नहीं है तो ज्ञानी पुरुष की चेष्टा, उनकी दशा, उसका अवलोकन करें, उसको उसका स्मरण करें और उसका विचार करें, ये बात रहनी चाहिए। तो समागम प्रत्यक्ष नहीं है, फिर भी समागम में जो कुछ परिणाम चलते हैं उस प्रकार के परिणाम चलेंगे। क्या रास्ता निकाला है अंतराय होते हुए, तो रास्ता क्या निकाल दिया कि इनकी दशा को निरखते हैं, स्मरण करते हैं और उसका विचार विशेष करते हैं। तो समागम में प्रत्यक्षता है, उतना तो असर नहीं आता है, लेकिन करीब करीब इनकी असर आ जाती है इसमें। ये भी एक पॉजिटिव साइड का मार्गदर्शन है कि कैसे करना चाहिए। हाँ ठीक, उसमें भी उसका स्मरण करने में, उसको निरखने में और इनकी दशा, इनकी चेष्टा विचार करने का एक निमित्त पड़ता है, यही तो कारण है, रखने का कारण यही है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं चार नंबर के पत्र में जो अभी आता है कि मुमुक्षु जीव भी जहाँ तक आत्मा का भाव भाषण नहीं होता वहाँ तक वो आत्मा को, आत्मा के विषय में विभिन्न प्रकार के पहलुओं से उसका विचार करता है, उस विषय में बहुत बढ़िया बात किया है इधर पे कि आत्मा को भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पना द्वारा विचार करने में क्या है, जहां तक भाव भाषण नहीं है तो उस विषय में जो भी विचार चलता है और वैचारिक भाव, बिना भाव भाषण कोई निश्चय और निर्णय पर पहुंचता है जी, तो ये काल्पनिक निर्णय है, बिना भाव भाषण वाला निर्णय है वो काल्पनिक है। और उसमें कल्पना होने का क्या कारण है कि जो भी सुनने में बात आती है, पढ़ने में बात आती है, उस पर से जो आगम युक्ति, अनुमान और तर्क से विचार को लंबा करके जो निश्चय किया जाता है भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पना करके, तो उसमें भाव भाषण नहीं आता और कल्पना हो जाती है। वो कल्पना मैंने गृहित मिथ्यात हो गया हूँ। हाँ, प्रयोजनभूत विषय है ना, इसलिए स्वरूप तो प्रयोजनभूत है, और प्रयोजनभूत विषय में अन्यथापना होता है तो ये गृहित हो गया बुद्धिपूर्वक का। तो सामने तो सत्शास्त्र है, या प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष को भी सुनने का होता है, और ज्ञानी पुरुष के वचनामृत के माध्यम से पढ़ना भी होता है, फिर भाव भाषण नहीं होवे और कल्पना हो जावे, ऐसा क्यों बनता है, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण इधर दिखाया है कि ऐसा होने में एक तो लोक संज्ञा है। क्या लोक संज्ञा? मैंने क्या कि जिस वर्तुल में, जिस सर्कल में हमारा परिचय है, जितने भी आदमी हमको धार्मिक रूप से पहचानते हैं, या हमारी धार्मिक प्रतिष्ठा या इम्प्रेशन बनी हुई है, सबको थोड़ी बहुत तो होती ही है, उसी को मुख्य करता है कि हमारी जो छाप है, हमारी जो इम्प्रेशन है, हमारी जो धार्मिक प्रतिष्ठा है, वो कुछ बड़े घटे नहीं और बड़े, पर बड़े नहीं तो, उतनी की उतनी तो रहे, घटे तो नहीं, ऐसी एक सावधानी। उस सावधानी को लोक संज्ञा कहने में आई है। लोगों की नजर में, चाहे वो मंडल छोटा हो चाहे मंडल बड़ा हो, मंडल को, सर्कल को हो, वर्तुल को हो, अपना धार्मिक समाज को हो, उन लोगों की नजर में हमारा स्थान क्या है, वो स्थान बढ़ना चाहिए या बना रहना चाहिए या गिरना नहीं चाहिए, तीनों प्रकार के जो परिणाम है वो लोक संज्ञा में जाता है। ऐसा लोक संज्ञा का जो परिणाम है वो आत्मस्वरूप का यथार्थ निर्णय मैंने पहचान नहीं होने देता। देखिए क्या बात आई, आज थोड़ी चर्चा चली ना, स्वरूप की पहचान करनी है, जिससे स्वरूप लक्ष्य होवे, और सभी शास्त्र का यही आशय है, लक्ष्य थवाने तेहनो कहा शास्त्र सुखदाय, सभी शास्त्र इसीलिए कहा है। तो ये लक्ष्य होवे या पहचान होवे, तो वो नहीं होने में क्या कारण पड़ता है, कौन सी बाधा आती है? जब हम एक बुद्धिमान मनुष्य है, हमारे सभी प्रयोजनभूत कार्य में हम अच्छी तरह हमारा बुद्धि का प्रयोग करते हैं, और इसमें भी हमको समझ पड़ती है कि ज्ञानी पुरुष क्या कहना चाहते हैं, महापुरुष क्या कहते हैं, श्री गुरु क्या कहते हैं, सद्गुरु की बात को समझ तो सकते हैं, पकड़ सकते हैं समझ में, लेकिन पहचान नहीं होती आत्मस्वरूप की। पदार्थ निर्णय जिसको कहा 254 पत्र में, पदार्थ निर्णय कहा, उसमें प्रतिबंधक कारण कौन है? कि एक तो जो धार्मिक क्षेत्र में आकर के भी जो लोक संज्ञा का परिणाम रहता है उसको पदार्थ का निर्णय नहीं होगा, स्वरूप की पहचान नहीं होगी। और आत्मस्वरूप के विषय में अपने क्षोभ्रम को लगाएगा, वो अपने विचारों को लगाएगा तो कल्पना बन जाएगी। ये कल्पना होने का कारण है, पावासन नहीं होगा, कल्पित निर्णय हो जाएगा। एक तो यह कारण है। शब्दार्थ से और भावार्थ से मेल खाता है, लेकिन कल्पना को सच्ची कहना ये बात ही वदतो व्याघात जैसी है, अपने ही कथन को तोड़ने की बात है। सच्चे को कल्पना नहीं कह सकता, कल्पना को सच्ची नहीं कह सकता। कल्पना मतलब झूठा, झूठा ज्ञान को कल्पना कहते हैं। लेकिन कहने का अभिप्राय तो यह है ना कि जो भी गुरु कहते हैं, जो भी शास्त्र कहते हैं, इससे हमारी समझ का मेल खाता है। शब्दार्थ और भावार्थ हमको बराबर लागू पड़ता है, ऐसा ही है हमारी समझ में। फिर भी पहचान दूसरी चीज है, इसलिए उसको दूसरा शब्द लिया, ओग संज्ञा। कृपाणु देव ने बात अधूरी नहीं रखी है, वो मुमुक्षुओं को अच्छी तरह पहचानते हैं कि किस किस प्रकार की गलतियां मुमुक्षु की भूमिका में संभवित है, ये संभवित बातों को खोलते हैं। ऊपर बैठे हैं ना, तो ऊपर जो बैठे हों नीचे वाले को अच्छी तरह समझते हैं कि वो कितने पेड़ी पर चढ़ा है, कितना स्टेप आगे बढ़ा है, कितना पगथिया या सीढ़ी पर उसने पैर रखा है, तो ऊपर वाले को दिखता है। तो एक तो वो प्राय लोक संज्ञा रहती है, छूटती नहीं है। दूसरा, लोक संज्ञा किसी को इतनी नहीं होवे या नहीं होवे तो ओग संज्ञा में रहता है। अब ओग संज्ञा में रहने का कारण क्या, ये भी एक कठिन समस्या है। एक तो संप्रदाय बुद्धि से गतानुगति क्रिया करे उसको तो ओग संज्ञा कहते ही हम, क्योंकि ये उपवास लोग कर लेते हैं या अपने संप्रदाय में दया दान की क्रिया कर लेते हैं, यात्रा आदि की क्रिया कर लेते हैं, पूजा भक्ति की क्रिया कर लेते हैं, मानते हैं कि सब ओग संज्ञा से करते हैं। परंतु जो तत्वज्ञान विषयक विचारणा करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सत्संग में चर्चा वार्ता भी छानबीन करते हैं, उसको भी ओग संज्ञा है कि नहीं है, इसका विचार हम लोगों को अच्छी तरह करना चाहिए, क्योंकि हम इस प्रवृत्ति में लगे हुए हैं। इसलिए दूसरे क्रियाकांड की बात भले ही हमें लागू न हो, क्योंकि हम नहीं करते हैं तो इससे हमारा कोई इतना लगाव नहीं है, प्रयोजन भी नहीं है। लेकिन जब तत्वज्ञान का हम अभ्यास करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, चर्चा प्रश्न भी करते हैं, तो इसमें ओग संज्ञा संज्ञा कहाँ तक है और कहाँ ओग संज्ञा की निवृत्ति जो होती है तो कब होती है, कैसे होती है, ये विषय हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो जहाँ तक स्वरूप का यथार्थ निर्णय या लक्ष्य या भाव भाषण या प्रतिभास जिसको कहते हैं ऐसा नहीं हुए तब तक जीव ओघ संज्ञा में पड़ा है ऐसा मान लेना चाहिए, यानी ओघ संज्ञा की निवृत्ति नहीं हुई है ऐसा अवश्य समझना चाहिए। अब समस्या यह है कि जब हम विचारणा करते हैं तो फिर ओघ संज्ञा क्यों कहवे? हमारे विचार और समझ अनुसार ही शास्त्रकार कहते हैं या श्री गुरु कहते हैं ऐसा हमको तो लगता है, या हमको नहीं समझ में आता है ऐसा नहीं लगता है, तो फिर इसको ओघ संज्ञा क्यों कहे? तो इसका कोई सबूत है क्या? इस योग संज्ञा कहने के पीछे कोई सबूत है क्या? हाँ है। यह सबूत वो है कि जब हमारी समझ हमें ठीक लगती है, विपरीत नहीं लगती है, उपदेश या बोध के अनुकूल लगती है, फिर भी यह योग संज्ञा है, इसका सबूत यह है कि इसके कारण से उत्पन्न होने वाला जो अंतर्मुखी पुरुषार्थ है वो उत्पन्न नहीं हुआ। क्या आत्मस्वरूप का कल्पना नहीं होना और यथार्थ निश्चय और लक्ष्य होने की बात है ना? तो जिसको आत्मस्वरूप की पहचान होती है उसको अंत तत्व स्वरूप आत्मा होने से, परमात्म तत्व अंतर तत्व रूप होने से उसका अंतर्मुखी पुरुषार्थ जागृत हो जाता है, जिसको गुरुदेव कहते थे चैतन्य वीर्य की स्फूर्णा। चैतन्य वीर्य की सहज स्फूर्णा चले रहा करे, ऐसा एक वचनामृत है इसमें परमागम सार में दिया है, दिया 210 के, यदि यह लक्ष्य में आए या रुचि में आए या वीर्य पूर्णा चलती रहे, यह सम्यक दर्शन पहले की बात है, यही सम्यक दर्शन का उपाय है, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, ऐसा एक 210 नंबर का गुरुदेव का वचनामृत आया है जो ओघ संज्ञा में नहीं होता ऐसा, ये इसका सबूत है। कल्पना में पुरुषार्थ की जागृति नहीं होती। सीधी सादी बात यह है कि आत्मस्वरूप की कल्पना है या यथार्थ उसका ज्ञान है या भाव भाषण है, उसका उसमें अंतर क्या है? कि शास्त्रों अनुकूल समझ दिखने पर भी पुरुषार्थ क्यों नहीं? दूसरा कि जब आपको ऐसा लगता है कि हमको बात तो यथार्थ समझ में है, कोई विपरीतता हमारी समझ में नहीं दिखती है, तो समझ के अनुकूल परिणमन है कि नहीं है? समझ अनुसार परिणमन अगर नहीं है तो वहां सावधानी या दरकार क्यों नहीं आई? उतनी दरकार क्यों नहीं आई कि समझ है फिर समझ के अनुसार परिणमन क्यों नहीं? जैसे एक मामूली दृष्टांत ले लेवे कि राग का कारण कोई पदार्थ होता है, जैसे खाने में कोई चीज का राग होता है, हमें इसकी पद्धति ले लेवे उदय में जो होती है। पर हमारी समझ यह कहती है कि पदार्थ कोई अच्छा बुरा है ही नहीं। जो हमारी समझ यही है तो हमारा परिणमन भी ऐसा ही रहना चाहिए। समझ और परिणमन में जो अंतर है वो अंतर को तोड़ने के लिए पुरुषार्थ चाहिए या जागृति चाहिए। वो जागृति नहीं है, ये इसका सबूत है कि हमको समझ हुई है फिर भी काल्पनिक समझ हुई है। इस समझ को समझ नहीं कह करके कृपालु देव कहते हैं कि वो तेरी कल्पना है, वो ज्ञान नहीं है। वो तत्व का ज्ञान, तत्व ज्ञान तो तेरे पास नहीं है, लेकिन तत्व ज्ञान संबंधित कोई कल्पना अवश्य हुई है जिसको ओग संज्ञा कहने में आता है। इसी का नाम ओग संज्ञा है। हाँ, स्वरूप निश्चय होने में बाधक कारण कौन सा है इसका ये विषय चलता है। विषयांतर नहीं होना है, विषय क्या चलता है पत्र में कि हमको शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से या तत्वज्ञान के अभ्यास के माध्यम से हमें आत्मस्वरूप का लक्ष्य करना चाहिए। लक्ष्य थवाने तेनो कया शास्त्र सुखदाई। जब हम शास्त्र पढ़ते ही हैं तो इसका हेतु तो स्वरूप लक्ष्य करने का है। तो स्वरूप लक्ष्य हमें नहीं होता है उसमें प्रतिबंधक कारण किस किस प्रकार का होता है इसकी चर्चा करते हैं इस पत्र में। तो हमें उतना देखना है अब कि कोई ऐसा प्रतिबंधक कारण में हम तो नहीं है, या है तो हम निकाल देंगे, वरना हमें आत्मस्वरूप का लक्ष्य होगा नहीं, और लक्ष्य नहीं होगा तो अनुभव होने का तो कोई सवाल ही नहीं फिर। इसलिए जो बात है वो उतनी है इधर। तो अब जो आपका प्रश्न है वो थोड़ी देर बाद चर्चा के काल में ले लेंगे, वरना वो विषयांतर हो जाएगा। अभी तो जो विषय चलता है उसी को अच्छी तरह समझें। तो एक तो लोक संज्ञा के परिणाम प्रतिबंधक होते हैं स्वरूप लक्ष्य होने में या स्वरूप की कल्पना कर हो जाने में, और एक ओग संज्ञा, और तीसरा है असत्संग। जिस जीव को सत्संग की प्राप्ति और रुचि नहीं है तो असत्संग तो लेना नहीं जाना पड़ता इस काल में। कुसंग, असत्संग, सत्संग और परम सत्संग, चार भेद से लेवे तो असत्संग कौन है कि उदय में जितने भी जीव अजीव का संग होता है, आत्मा में जो नहीं है, जो असत है, उसका संग होता है वो असत्संग है। प्रीति से अप्रीति रहे, उपेक्षा रहे तो बढ़िया बात है, तो उसको असत्संग नहीं कह सकते। क्यों कि 2400 घंटों परिवार के बीच में रहना पड़ता है, व्यवसाय आदि भी होता है उदय में, समाज भी, समाज के बीच में सिटी में रहते हैं, जंगल में तो रहते नहीं मुमुक्षु लोग, तो संग तो किसी न किसी का रहेगा ही, होगा ही। लेकिन मैं हमारी इसमें प्रीति हो, रुचि हो या अपेक्षा वृत्ति हो तो उसको असत्संग कहने में आता है। जैसे घर में हमारे सभी प्रकार की अनुकूलता रहनी चाहिए, परिवार के सदस्य हमारे अनुकूल रहने चाहिए, होने चाहिए, ये अपेक्षा प्रति होगी ना। ये क्या हुआ? असत्संग हुआ, प्रतिबंधक कारण, स्वरूप लक्ष्य होने में प्रतिबंधक कारण है। और दुकान पे जाते हैं, धंधा रोजगार करते हैं, उसमें भी लगातार काम नहीं रहे और थोड़ी भी फुर्सत मिले तो चला के ऐसे लोग दूसरे व्यापारी के साथ बैठ जाता है, दलाल के चैम्बर में चला जाता है, क्या क्या है आई समझ में। अपेक्षा वृत्ति से निवृत्ति मिलती है तो भी उसी व्यवसाय की प्रवृत्ति की प्रीति रुचि और संग करने के भाव चला करके जो होता है वो सब असत्संग है। ऐसे ही निवृत्ति रहती है और समाज के लोगों के साथ बैठना उठना है कि चलो भाई आज तो रविवार है ना, कल किसके घर जाएंगे, कल रविवार है, छुट्टी है, दुकान पे नहीं जाना है या ऑफिस में नहीं जाना है, सर्विस भी नहीं है, तो फिर किसके घर जाएंगे, कोई मित्र के घर जाएंगे या कोई सगे संबंधी के घर जाएंगे। ऐसे निवृत्ति मिलती है फिर भी जिसका धार्मिक कारण से प्रीति रुचि संग करना अनुकूल नहीं है, ऐसे लोगों की संग करने की वृत्ति होती है उसको असत्संग कहते हैं। कोई क्लब में जाते हैं, कोई पार्टी बना लेते हैं, कोई पिकनिक पे चले जाते हैं, या तो अपने परिवार को बुला ले, में भाई लोग दूसरे अलग अलग रहते हैं तो साथ में जिमेंगे, या लड़के अलग हो गए तो उनको साथ में ले लो ऐसे, या अपने मित्र मंडल को बुलाओ। ये सब प्रकार का जो संग करने की वृत्ति है सब असत्संग है, वो तो लेना ही नहीं जाना पड़ता, सहज मिल जाता है। ये असत्संग की जो रुचि है वो सत्संग से विरुद्ध रुचि होने से स्वरूप की पहचान में प्रतिबंधक कारण वाले परिणाम है। है जी, कठिन तो रुचि होगी तो इसकी रुचि में वो कठिन लगेगा, उसकी अरुचि होगी तो कठिन नहीं लगेगा। क्या असत्संग की जिसको रुचि है उसको कठिन लगेगा, और जिसको असत्संग करना नहीं है, निरंतर सत्संग में अपना समय गुजारना है, उसको कोई कठिन नहीं लगने वाली बात है। ऐसी बात है, थोड़ा मिलान कर लेना अपना परिणामों से रुचि के, तो पता चल जाएगा इस बात का। तो ये तीनों बात हैं, उसको अभी तो अपने पास इतना समय नहीं है, लेकिन अच्छा समय निकाल करके अधिक गहराई से इसका विचार करना चाहिए। जब ही हमें आत्मा की स्वरूप पहचान होने का मार्ग साफ हो जाएगा, वरना प्रतिबंधक कारण जो है वो खड़े रहेंगे, तो तत्वज्ञान की प्रवृत्ति करते रहेंगे, शास्त्र पढ़ते रहेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे, स्वरूप का लक्ष्य होगा नहीं, ये बात हो जाएगी। तो मुमुक्षु के लिए ये जो बात लिखे है इधर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ऐसा समझकर, इसकी गंभीरता को समझ करके अच्छी तरह इस विषय की गहराई में जाना चाहिए। अभी समझ में ऐसी स्थिति बताइए, बिना गुरु कहे उनका जो अभिप्राय है वो राइट निकलेगा, क्या कारण है? क्या कारण है उसका? यही कारण है कि वो वितरागता और निर्दोषता को अच्छी तरह पहचानता है अपने परिणमन से, तो पता चल जाता है कि कहाँ वितरागता कैसे होती है, और सर्वज्ञता कैसे होती है। नौ तत्वों का ज्ञान है, भाव ज्ञान है, भले नाम नहीं आता हो लेकिन भाव में तो उसका ज्ञान होता है। ऐसा है, है? मुमुक्षु में तो जहाँ तक परिपक्वता नहीं है, यथार्थता विचारणा की नहीं होती है, तो गलती होती ही रहती है। अगर सुविचारणा होती है तो गलती होने की बहुत कम संभावना है, बस उतनी बात है। जो मुमुक्षु अपने आत्मा के उत्कर्ष की श्रेणी में आ चुका, क्या आत्म उत्कर्ष की श्रेणी होती है परिणामों की, जैसे कोई श्रेणी में पहले वर्ग में बैठता है, फिर उत्तीर्ण होकर के दूसरे वर्ग में आता है, फिर उत्तीर्ण होकर के तीसरे वर्ग में आता है, स्कॉलर होते हैं ना, तो भले ही वो ऊपर के स्टैंडर्ड में नहीं गया है, लेकिन जो भी स्टैंडर्ड में है वहाँ बिल्कुल काम ठीक करता है, तो इनके लिए वो नीचे का स्टैंडर्ड है वो दोष नहीं गिना जाता। ऐसे जो भी मुमुक्षुता में भी जो आत्मा उत्कर्ष की श्रेणी में है और उस श्रेणी के कारण से वो आगे जाकर के ज्ञान दशा में प्रवेश करने वाला है, उनको मुमुक्षुता में गलती की बहुत कम संभावना है। कभी क्षोभसम कम होने से या परंपरा का ज्ञान नहीं होने से कोई गलती हो जाती है तो भी निकलने में देर नहीं लगती, रहने वाली नहीं है, इसलिए वो गिनने में नहीं आती। अच्छी बात है। विकल्प में पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन योग्यता के भेद प्रभेद बहुत है। देखिए मार्ग अनुसारी को क्या है, विकल्प में क्लियर पिक्चर नहीं है। अब देखिए कि नरसिंह मेहता था तो जगतकर्ता ईश्वर को मानने वाला था आदमी, तो जगतकर्ता ईश्वर को मानते थे, श्री कृष्ण को मानते थे, श्री कृष्ण की पूजा भक्ति करते थे, लेकिन निष्काम भक्ति थी इसकी। कैसी थी? दरिद्र होते हुए ही कभी उन्होंने अपनी अनुकूलता को मांगी नहीं, बहुत दरिद्र थे। घर पे मेहमान आवे तो घर में पूरी तलने का तेल नहीं मिले या पूरी बनाने का आटा भी नहीं मिले, तो इनकी पत्नी बोले कि तुम जाओ लेके आओ, जरा बाजार में से ले आओ, क्या खिलाएंगे उनको, मेहमान तो आ गए, सगे संबंधी आते तो हैं। वो लेने को जावे और रास्ते में इनके मुमुक्षु मिल जावे और बोले कि मेहता जी अपने को एक दो भजन सुनना है, कि चलो बैठ जाओ हम करते हैं भजन, वो भजन करने लग जाते थे। वो आटा लाना तेल लाना भूल जाते थे, उनको इतनी भक्ति थी अपने आराध्य देव के प्रति, को भूल जाते थे कि मैं किस काम से घर से निकला। और इनका एक नरसिंह मेहता का चोरा भी जूनागढ़ में दिखाते हैं, वहाँ उनके जो जो संग में लोग थे वहाँ वैसे ही थे, वो भी ऐसे ही काम धंधे वाले नहीं थे, आई समझ में, बेकार लोग जिसको कहते हैं आज, तो बैठे रहते थे, मेहता जी निकले तो बिठा देवे उनको, क्योंकि वो भाव से बहुत गाता था, उनको भक्ति निष्काम भक्ति थी ना, इसलिए बहुत भाव से वो गाते थे और स्वतः पद रचना कर लेते थे, इनके निकलती थी कवित्व शक्ति भी निकल जाती थी। तो उन लोगों को तो आश्चर्य होता था, एक ऐसा मस्त आदमी है, कोई उसको गरीबी उतनी है हाँ कि करना फकीरी क्या दिलगिरी, सदा मगन मन रहना जी, वो अपने में इतना मस्त रहता था। तो उन लोगों को भी बहुत इनके प्रति बहुमान रहता था, तो वो भी बैठ जाता था, भूल जाता था कि मुझे घर पे आटा पहुंचाना है, वो पत्नी देर क्या इंतजार करती होगी कितना। अभी ऐसा ईश्वर कर्तृत्व वाला आदमी को जहाँ लगी आत्मा तत्व चिन्हो नहीं, त्या लगी साधना सर्व झूठी, आया कहाँ से बताइए, कहाँ से आया वो? ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि वो इसके आत्मा बोलती है। कौन बोलता है? वो इसका आत्मा बोलता है, क्योंकि इनके शास्त्र में तो ऐसी बात है नहीं, न उसने पढ़ा भी है, शास्त्र पढ़ा भी नहीं था वो तो। तो कहते हैं कि ये तो पूजा करता है, समुद्र स्नान करता है, जाप जपता है, ये सब लोग करते हैं ना, तो कि ये सब परपंच पेट भरने के लिए है, ऐसा गाया है उन्होंने, ये सब प्रपंच पेट भर ना भरवातना सुन एम करीने। तो शुं करे छे, लोको जे आडंबर करे छे ए तो एने लोको मानवा मंडे छे ने अनुकूलताओ आपे छे माटे वो आडंबर करे छे, तो पेट भरने का प्रपंच है सब। बाकी जहां लगी आत्मा तत्व चिन्हो नहीं, त्यां लगी साधना सर्व झूठी, शुं करियूं एम करीने जप जेपा थकी एम करीने। बहु हमणां ज एनुं पद आव्युं हतुं पेपरमां दिवस हतो, तो જન્માષ્ટમી ગઈ ને, કૃષ્ણાષ્ટમી પદ હતું નરસિંહ મહેતાનું, તો એનું કારણ છે એવી રીતે આત્મામાંથી સ્વભાવમાંથી વસ્તુ બહાર સેમ્પલ આવે છે તો ખબર પડે છે જ્ઞાનીઓને, કોઈ લાગે છે કોઈ માર્ગ અનુસારી જઈ, અન્ય મતમાં જન્મી ગયો છે કોઈ અપરાધ કરીને, પણ લાગે છે કોઈ માર્ગ અનુસારી સંસ્કારનું કારણ એ આનું છે, કરતા મતે મટે તો તૂટે કર્મ, એ છે મહાભજન નો મર્મ। મહાભજન કો મર્મ ઓર મહાભજન એસા શબ્દ નિકાલા, કે કરતા મટે તો તૂટે કર્મ, એ છે મહાભજનનો મર્મ। તું છો જીવ ને તું છો નાથ, પરમાત્મા જીવ ભી તુજે કહેતે હૈ ઓર પરમાત્મા ભી તુજે કહેતે હૈ, તું છો જીવ ને તું છો નાથ, એમ કહીને અખે ઝટકા હાથ, કે હવે કઈ મારે કહેવું નથી, કહેવું તું બધું કહી દીધું એક પદમાં, ક્યાંથી કાઢ્યું? તો વો તો બિલકુલ અનપઢ લોક છે, સ્કૂલ મેં બેઠે હી નહીં થે પઢને કો, હા નહીં એમાં શું છે કે આ ભાવમાં નહીં તો આગળ જઈને કામ કરે, આ ભાવ કામમાં ન આવ્યો, ગ્રહિત મિથ્યાત્વના કારણે। હું તો ચર્ચા મુમુક્ષુતાનો પ્રશ્ન નીકળ્યો છે, મુમુક્ષુતામાં એવા એવા ચિત્ર વિચિત્ર પ્રકારો છે કે જલ્દી કોઈનો અંદાજ નહીં બાંધી લેવો, કોઈનો દેખાવ કેવો હોય, કોઈનો કોઈનો બહારનો દેખાવ કેવો હોય, આજ કોઈ કેવો દેખાતો હોય, કોઈ કેવો દેખાતો હોય, જલ્દી અંદાજ નહીં બાંધવો, એમાં ઘણા ચિત્ર વિચિત્ર પ્રકારો છે। वहां से तो बस नियत मार्ग हो गया, नियत अप्रोच फिक्स है बात, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। साचा देव हाँ ऐसा तो है, जब भी भाव भाषण होगा, ये नरसिंह मेहता को भाव भाषण नहीं होगा, ये नहीं होगा, देवगुरु शास्त्र सच्चा होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं, इस संप्रदाय का आग्रह छूट जाए जब भी कुछ हो सकता है। जैसे गुरुदेव स्थानक वासी में थे, सम्यक दर्शन हुआ, उस वक्त कहाँ थे? संप्रदाय में थे। स्थानक वासी के साधु माने जाते थे, गिने जाते थे, लेकिन श्रद्धा उड़ गई थी अंदर में से। जब उन्होंने शास्त्र देखा तो पता चल गया कि जिनागम में तो भगवान की प्रतिमा जी की स्थापना और मान्यता है, वो सही है, और हमारे संप्रदाय वाले मायाचार करके इस बात को उड़ाते हैं, छल पकड़ करके, अहिंसा का छल पकड़ते हैं। तो ये बात तो न्याय संपन्न नहीं है, धर्म विरुद्ध है। न्याय विरुद्ध भी है तो धर्म विरुद्ध तो यही। तो श्रद्धा उड़ गई उनकी, फिर भी उन्होंने क्या किया, एक पुराने जो साधु थे, वृद्ध, वृद्ध दीक्षा में भी वृद्ध, उम्र में भी वृद्ध और दीक्षा में भी वृद्ध थे, उनके पास गए, पुरुषोत्तम लाल जी करके थे। महाराज शास्त्र में तो ये सब प्रतिमा जी की बात आती है, स्थानक वासी अपने संप्रदाय के सब पुराने साधु पर बस गए। वो बोले कि आप तो पुराने हैं, सब पढ़े हैं, सब जानते हो और प्रमाणिक भी तो हो, लेकिन ग्रंथ में है, अपने 33 आगम में बात है प्रतिमा जी की स्थापना की। तो पहले तो प्रमाणिक जवाब नहीं मिला कि नहीं, वो यक्ष की प्रतिमा की स्थापना की बात चली है। तो कि नहीं, मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है, विचार भी किया है, वहां यक्ष की प्रतिमा की बात नहीं है, जिन प्रतिमा की बात चली है मैं सिद्ध कर सकता हूं, आगम में से ये सिद्ध होता है। तो उनको पता था कि ये कांजी स्वामी, जिसको वो तो आपस में तो स्वामी नीचे वाले को नहीं बोले, तो कांजी है, वो है तो बहुत बुद्धि वाला, चकोर है, पैनी बुद्धि है इनकी, और ऐसे अपने कहने से मानने वाला आदमी नहीं है, वो तो बराबर चर्चा करेगा हमारे साथ। तो उनको भी सब ख्याल तो था कि बात को हम घुमा देते हैं यक्ष की प्रतिमा करके। तो फिर उन्होंने शांति से बोल दिया कि एक बात झूठी कही 10 झूठ बोलना पड़े, क्या फायदा इससे, एक बात झूठ बात को पकड़ कर रखने से दूसरी 10 बात झूठ बोलनी पड़े। तो उसने बोल दिया, तो भाई कांजी तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हमारे संप्रदाय में प्रतिमा का नाम लेने लेवे तो मारने लग जाएंगे लोग अपने को, खाना तो मिलेगा ही कहां से, रोटी भी नहीं मिलेगी कल से, तो मारेंगे लोग, इतना प्रेजुडाइज चल रहा है प्रतिमा के प्रति। तो उनको तो आश्चर्य हो गया कि अरे क्या रोटी के लिए हमें ऐसा करना है क्या, हमारे घर में रोटी का कोई अभाव था, तोड़ा था क्या, इसलिए हमने दीक्षा लिया क्या रोटी खाने के लिए, हम तो रोटी खाने के लिए नहीं आए। तो अगर कोई भी लोभ या मान या किसी कसाय के आधार से सत्य को कोई छिपाते हैं तो आत्मार्थता नहीं रहती। तो गुरुदेव ये बोले कि हमको उस वक्त फट सा ऐसा विचार आया कि ये स्थानक वासी संप्रदाय में एक आत्मार्थी भी नहीं है, साधु तो क्या, साधु तो ऊपर का गुण स्थान है और चतुर्थ गुण स्थान तो ज्ञानी का होता है, लेकिन आत्मार्थी कोई नहीं है। क्यों? कि सत्य को वो छिपाते हैं, सत्य को वो बदलते हैं, या सत्य को दूसरे बात से घुमा देते हैं, जिसको छल कहते हैं अपन। तो उसमें तो आत्मार्थता भी नहीं रहती, मुमुक्षुता भी नहीं रहती, ज्ञानीपना और साधुपना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यही विकल्प आया, कहते थे मुझे ऐसा विचार आया कि कोई आत्मार्थी भी सारे संप्रदाय में एक भी आत्मार्थी नहीं है क्या, सबका नाप ले लिया। एक पुराना साधु का स्टेटमेंट से सारे संप्रदाय का नाप निकाल लिया। हमें यहाँ नहीं रहना है, जहाँ एक आत्मार्थी भी नहीं हुए हमें वहां किसी का संग नहीं करना, निर्णय कर लिया। फिर उसको एग्जीक्यूट करने में कुछ देर लग गई, लेकिन निर्णय तो हो गया, तो इसमें हम नहीं रहेंगे, छोड़ दिया संप्रदाय। मान बहुत भी मिलता था फिर भी छोड़ दिया। मान मिले या अपमान होवे, कुछ भी होवे, सत्य को छोड़े वो आत्मार्थी भी नहीं है। ऐसी बात पड़ जाता है। मुमुक्षु यथार्थ विचारधारा वाला होता है तो उसको कुछ बात समझ में आती है, प्रतीति आती है, यथार्थता हो तो। फिर भी गलती हो की संभावना है, वहां पहचान नहीं आई है जहां तक। अगर पहचान लिया तो फिर उसका काम आगे भाव भाषण का अनुसंधान बैठ जाएगा, ऐसा होता है। ऐसी पात्रता विशेष होने से पहचान आती है, सर्वज्ञ की या मुनिराज की या सम्यक दृष्टि की, तो उसमें एक न्याय से स्वभाव का भाव भाषण है, वो स्वभाव जाति की पहचान है उसमें, तो अपना स्वरूप की पहचान भी फिर हो जाती है, ऐसा बनता है कभी। हाँ, सम्यक ज्ञान होने के बाद में ही दीक्षा लेनी चाहिए, मगर आजकल ऐसी पद्धति नहीं रही। हम बहुत से आचार्यों को मिले हैं जो दीक्षा देते हैं दूसरों को, उनको पूछते हैं कि अपने आप में सम्यक ज्ञान है क्या, तो खुद में तो है ही नहीं, क्योंकि हम तो दो सवाल और भी पूछ लेते हैं सम्यक ज्ञान क्या चीज है, और फिर अगले को सम्यक ज्ञान है और दीक्षा देते हो या वैसे ही दे देते हो, तो इकरार करते हैं कि ना हमारे में सम्यक ज्ञान है ना अगले में भी है, लेकिन वो संसार में रहेगा, छकाई जीव की हिंसा करेगा, इसके लिए साधु हो जाए तो अच्छा है, छकाई जीव की हिंसा तो नहीं होगी, और वो हिंसा नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा, तो पाप नहीं करने का अनुमोदन का पुण्य हमको भी मिल जाएगा। तो वितराग मार्ग में आ करके पुण्य पाप का हिसाब किताब लगा करके पुण्य पाप का व्यापार में लग जाते हैं, वितरागता का व्यापार नहीं करते, ये भूल होती है इसमें, ये वितराग मार्ग है। आत्मा का जन्म मरण मिट जाए ऐसा मार्ग है, इसमें सिर्फ पुण्य हासिल करना और पाप को छोड़ना, उतनी ही अभिलाषा रखना, ये ना समझ है, अज्ञान है। इसलिए जैसे कहते हैं ना कि कोई जंगली जंगल में रहने वाला आदमी होता है, तो वहां कोई राजा को तृषा लगती है, पानी नहीं मिलता है, या उनको पानी पिलाता है, या क्या मरने में बचा देता है, कोई सिंह वाघ या अजगर वगैरह के उपद्रव से बचा लेता है, मृत्यु से छुड़ाता है कैसे भी, और फिर वो उनको ले जाता है कि चल तू मेरे राजधानी में चल तू, तो राजधानी में वो उनको बोलता है कि देख इतना वैभव है, ये जीवन के आगे कोई चीज की कीमत नहीं है, अगर तू चाहता है तो मैं मेरा राज भी दे सकता हूँ तुझे, मेरा वचन है तुम जो भी चाहे वो मांग ले, लेकिन मांगने की अक्ल नहीं होती तो क्या मांगेगा, कि मेरी झोंपड़ी में ये बारिश के दिनों में पानी बहुत गिरता है, तो उसको जरा रिपेयर करा करके ये मिट्टी के जो नलिया क्या बोलते हैं, है? उसको जरा नहीं ये लगा दो, जो फूट गए हैं उसको रिप्लेस कर दो तो पानी नहीं गिरे। जिसको मांगने को भी नहीं आता है, उसने बोला कि तुम रात ले लो, तो कह नहीं हमको तो पानी नहीं गिरे तो हमारी झोपड़ी में चौमासा में तकलीफ नहीं है। या तो हमारे जो जूते हैं फट गए हैं उसको रिपेयर करवा दो, क्या हमारे जूते फट गए हैं तो हमारा जो पैर जलता है गर्मी में तो उसको जरा रिपेयर करवा दो, 8-8 रुपया में उसको जरा ठीक करवा दो। अरे तुमको मांगने के भी अक्ल नहीं है कि क्या मांगना, ऐसे वितराग मार्ग में आया और पुण्य को मांगता है तू, जन्म मरण छूटने का मार्ग है, तुम्हें मांगने की भी अक्ल नहीं है क्या? इतना वैभवशाली मार्ग है, जन्म मरण छूट जाता है, ऐसे मार्ग में आने वाले को पुण्य मांगना बहुत ऐसी बात है, ये जंगली आदमी जैसी बात है। टाइम हुआ।